वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आप सबके बड़े कृतज्ञ हैं क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर श्री पंढरपुर धाम में श्री वारकरियों के सेवा में अपना समय दिया है। अपनी इच्छा और अपने विचार और प्रयत्नों के साथ में आपने यहाँ पर वारकरियों की सेवा की है, इसलिए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के ट्रस्टियों की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, गुरु महाराज की ओर से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि इस छोटे से प्रयत्न से हम देखते हैं कि कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। जो लोग कैंप में भाग ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आध्यात्मिक उन्नति का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो जो रास्ते पर नंगे पैर धूप छाँव बारिश में चलते हुए पंढरपुर में आते हैं, उनकी तपस्या तो हम कभी नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता। और वो लोग केवल एक सेकंड के पांडुरंग के दर्शन के लिए और चंद्रभागा में स्नान करने के लिए कितने दिन तक कष्ट भुगते हैं, इतना कितने लोग यहाँ पर बेहोश अवस्था में भी आते हैं, चक्कर आके गिर जाते हैं, किसी को फिट आती है, लेकिन उनका उत्साह कितना तीव्र है भगवान का एक सेकंड दर्शन करने के लिए। इतना समाधान है उनके चेहरे पर चंद्रभागा में स्नान करने के बाद। ऐसे जो ज़्यादा ऐश्वर्य संपन्न भी नहीं है, ऐसे शुद्ध प्रामाणिक भक्तों की सेवा करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। और इस कैंप के माध्यम से जो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, जिनको यहाँ पर सहारा नहीं है, उनको सहारा मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, जब ज़रूरत पड़ती तब भी वैद्यकीय सेवा मिल जाती है। तो ये बड़ा सुंदर आयोजन है, इससे जो भी जुड़े हुए हैं सभी का कल्याण होना है। और आप लोग जुड़ जाते हैं इसलिए ये कैंप की भव्यता और बढ़ जाती है और सालों साल बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूँ, आते रहिए, इस कैंप में सेवा करते रहिए। और हमारे यहाँ पर एक मित्र हैं बाला साहेब करके, यहाँ के ट्रस्टी हैं विट्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति के, वो कहते हैं कि जो गरीब वारकरी है उसको कोई पोजीशन नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है उसके पास, कोई उसका अधिकार नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है उसकी, जो गरीब वारकरी इतना दूर दूर से जब आप यहाँ पर आता है और जब आप उसकी सेवा करते हो तो निश्चित रूप से श्री विट्ठल भगवान आप पर कृपा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भगवान जो है वो अपने से ज़्यादा, बलराम भैया से ज़्यादा, रुक्मिणी पत्नी से ज़्यादा अपने भक्त पर प्रेम करते हैं, और उनकी सेवा जो करता है उसे भगवान के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, भगवान उनके पास चले आते हैं। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, क्योंकि उनको देखने का प्रयास करना ये जीव के लिए बहुत जैसे नामुमकिन जैसी चीज़ है। जैसे अगर हमारे में से कोई अगर प्रधानमंत्री को देखना चाहे या तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को मिलना चाहे तो कितनी मुश्किल बात है वो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सोचता है कि आपको मिलना है तो कितना आसान है, बड़ी आसानी से मिल सकता है वो। उसी तरह से भक्ति सिद्धांत जी महाराज कहते थे कि अगर हम लोग ऐसा कार्य करते हैं, भक्ति पूर्ण कार्य, कि जो देखने के लिए भगवान स्वयं आपको देखने के लिए आ जाए, तो ये बड़ा आसान तरीका है भगवान के ध्यान को आकर्षित करने का। ये आसान तरीका है कि हम भगवान के भक्तों की सेवा करें। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम का जप और वैष्णवों की सेवा, ये दो इस कलयुग के युग धर्म हैं। और भगवान के नाम में हमारा कभी कभी धन ध्यान यामा हो सकता है, तो सेवा जो है वो हमें अधिक, क्या कहते हैं ना मराठी में, खातरे लायक रीत्या मतलब अधिक अच्छी तरह से भगवान के साथ जुड़ने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का मौका हमें दे सकता है। तो ऐसा ये पंढरपुर क्षेत्र है, भू वैकुंठ धाम से इसको जाना जाता है, पृथ्वी से चार उंगलियां ये ऊपर है, पृथ्वी पर नहीं हो आप लोग अभी, पृथ्वी से ऊपर है श्री वैकुंठ धाम, प्रलय काल में इसका नाश नहीं होता है और हर संप्रदाय के हर प्रकार के संत यहाँ पर आकर उन्होंने अपना दर्शन चंद्रभागा स्नान भजन पूजन किया हुआ है। उसमें से मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, हाँ, और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के सभी संतगण, ज्ञानेश्वर माउली, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, उनका तो जन्म ही यहाँ का है, नामदेव महाराज का, मध्वाचार्य और सबके शिरोमणि नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज संक्षेप में हम प्रयास करेंगे आपको बताने का श्री नित्यानंद प्रभु के यहाँ के भेंट का। श्री नित्यानंद प्रभु हम जानते हैं उनका जन्म एक चक्र में हुआ था, हड़ई पंडित और पद्मावती देवी उनके माता पिता का नाम है, और यथावकाश बचपन में उन्होंने बहुत लीला किया, सभी भगवान के जितने भी अवतार थे सभी भगवान के अवतारों का लीलाओं का नाटिका उन्होंने अपने बाल लीला में प्रस्तुत किया। सब लोग आश्चर्य करते थे कि इनको कैसे पता है सब, ये छोटे से बालक है, कहीं शास्त्र पढ़ा नहीं, कोई गुरुकुल में गए नहीं अब तक, लेकिन बड़े अद्भुत तरीके से वो इन दिव्य लीलाओं को, रामलीला, नरसिंह लीला, सब लीलाओं को प्रकट करते थे। यथावकाश एक ब्राह्मण आता है सन्यासी और हड़ाई पंडित को कहता है कि मुझे आपका बालक चाहिए, मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, मुझे सहायता के लिए सेवा के लिए कोई बालक चाहिए। तो हड़ाई पंडित बेहोश हो जाते, लेकिन फिर जब होश में आते हैं तो समझते हैं कि साधु की इच्छा को टालना नहीं चाहिए। नित्यानंद प्रभु बड़ी ही उत्सुकता से, बड़े ही आतुरता से उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, तुरंत जाने के लिए तैयार। और फिर जैसे बलराम जी ने महाभारत के युद्ध के समय पूरे मतलब निवृत्त होकर, वहाँ से पॉलिटिक्स जो चल रहा था उस समय उससे निवृत्त होकर वो भारत भर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, उसी तरह से बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु सब तीर्थ यात्रा के लिए साधु के साथ चले गए। तो यहाँ पर हमारा जो संप्रदाय है, ब्रह्मा, फिर नारद मुनि, फिर व्यासदेव, फिर मध्वाचार्य और फिर उनके शिष्य परंपरा में अनेक संत आते हैं। उसमें एक संत थे लक्ष्मीपति तीर्थ। ये लक्ष्मीपति तीर्थ जो थे वो बड़े प्रेमातुर भक्त थे, हमेशा प्रेम भक्ति पूर्ण भावना में मग्न रहते थे। तो एक बार अपने शिष्य वृंदों के साथ में श्रीधाम पंढरपुर में आए और वो हमेशा श्रीधाम पंढरपुर में आते थे। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी जैसे उनके बड़े श्रेष्ठ भक्त थे, शिष्य के रूप में बड़े श्रेष्ठ भक्त थे वो। माधवेंद्रपुरी ने तो राधा रानी के तत्व का प्रकाश किया, वो इनके शिष्य थे। तो हमेशा एक ब्राह्मण के घर पे रहा करते थे। तो इस बार जब वो इस ब्राह्मण के घर पे रहने को आए, उन्होंने भिक्षा किया, भोजन किया, कृष्ण कथा किया, लेकिन इस बार उनको कोई ऐसा अद्भुत अनुभव हो रहा था कि हर बार मैं यहाँ रहता हूँ, हर बार जो भी कार्य करता हूँ उससे एक प्रकार का आनंद होता है, इस बार कोई दिव्य अनुभूति अंदर से हो रही है, कोई अलौकिक अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अलौकिक घटना घटने वाली है। तो अपने शिष्यों को और अपने यजमान ब्राह्मण को बताते हैं कि आज हमारे इस भेंट में आपके घर के कुछ अद्भुत अनुभव हो रहा है, क्या विशेष बात है? ब्राह्मण कहते हैं आपकी कृपा है, आप आए हैं, यही अद्भुत बात है। लेकिन लक्ष्मीपति किसी और चीज़ को निर्देशित कर रहे थे। शाम का समय था, अलग अलग विषयों पर चर्चा हो गई और फिर लक्ष्मीपति जी अचानक उनका ध्यान लग गया। ध्यान में मग्न होकर वो उनका अंतकरण जो है वो भाव से भर आया और उनको स्वयं स्फूर्तता से ही बलराम जी की याद आई और उन्होंने बलराम जी का स्मरण करना आरंभ किया। आप सब लोग भी बलराम जी का स्मरण कर सकते हैं। बलराम जी का स्मरण करते ही उनकी आंखों से आंसू आए, शरीर गदगद हो गया उनका, रोमांच खड़े हो गए, अष्टविकार प्रकट हो गए उनके शरीर में। और उसी भावना में उन्होंने बलराम जी से प्रार्थना करना शुरू किया। हे बलराम जी, मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा पतित हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ, कृपा करके आपकी कीर्ति बढ़ाइए। अगर मुझ जैसे पापी पर आप कृपा करेंगे तो आपकी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। ऐसे करते करते उनको मूर्छा आ गई, मतलब वो बेहोश हो गए, नेत्रों से अविरत आंसू बह रहे थे उनके, बड़े व्याकुल हो गए थे वो, वृद्ध भी थे अवस्था से। उस बीच जब वो अति आनंद के अष्टविकार का अनुभव कर रहे थे, उनको भगवान की इच्छा से निद्रा आ गई, सो गए वो। तो क्या करते हैं, जैसे ही वो सोते हैं तो उनके स्वप्न में श्री बलराम जी प्रकट हो जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। जो चांदी का पर्वत होता है ना, उससे उसके सौंदर्य को भी परास्त करने वाला सौंदर्य था बलराम जी के अंदर। उनका सीना बहुत चौड़ा था, बहुत विशाल बाहुदंड थे उनके, कान तक फैले हुए उनके सुंदर नेत्र थे, चित्ताकर्षक कंधे पर बहने वाले उनके कर्ण कुंडल थे, और उनके कमर में लेफ्ट साइड में जो गाय को चराने समय होता ना, वो बिगुल, बफेलो हॉर्न क्या कहते हैं उसको मराठी में, क्या कहते हैं, हाँ, शिंग शिंग, उससे वो आवाज़ करते हैं, अपने बैलों को बुलाते हैं, वो उनको लगाया गया था। सुंदर वस्त्रों से और अलंकार से वो सुशोभित थे, और उनका मुख सौंदर्य जो है वो सबको प्रसन्न कर रहा था, और अमृत जैसे सुंदर वाणी से उन्होंने स्वप्न में लक्ष्मीपति तीर्थ से संवाद किया। बड़े ही मृदु स्वर में, मधुर स्वर में वो बोले, हे लक्ष्मीपति, मैं कई दिन से तुम्हारे हृदय का ये जो आक्रंदन है, मतलब प्रेम से आप मुझे पुकार रहे हो, नम्र भावना से मैं सुन रहा हूँ। तब लक्ष्मीपति उनके चरणों में गिरे, उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी आपके विषय में आपके चरणों की जो भक्ति है उसके में कभी भी अंतर नहीं आए, कभी उसके अंदर विक्षेप ना आए। तो मधुर हास्य करते हुए बलराम जी ने उनको कहा कि कल आपके पास एक ब्राह्मण का पुत्र अवधूत वेश में आएगा, उसे आप दीक्षा देकर, मंत्र देकर दीक्षा देना, और जो मंत्र देना है वो लक्ष्मीपति के तीर्थ के कान में बलराम जी वो मंत्र बोलते हैं, और लक्ष्मीपति जी बड़े आनंद से आनंद को प्राप्त करते हैं, और बलराम जी स्वप्न में अंतर्धान हो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं लक्ष्मीपति जी तो अपने स्वप्न को याद करने लगते हैं। उतने में नित्यानंद प्रभु उनके सामने आते हैं। आप जानते हैं नित्यानंद प्रभु बड़े अवधूत हैं, मतलब कभी क्या करेंगे, किस प्रकार का वर्ताव करेंगे, उसमें कोई सोच नहीं सकता कि क्या करेंगे आगे, इसलिए उनको अवधूत कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल। तो वो सुंदर नीली धोती पहनकर, सुंदर तेज पुंज शरीर धारण करके उनके सामने आते हैं। उनका तेज और सौंदर्य देखकर लक्ष्मीपति कहते हैं कि ऐसा सौंदर्य मनुष्य का नहीं हो सकता है, इज कैनॉट बी पॉसिबल टू बी ह्यूमन बींग। तो फिर आँखों को, मतलब पलकों को ना झपकते हुए एक टक कहते हैं ना उसको, एकाग्रता से उनको देखते रहते हैं। उतने में नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुवर, आप मुझे दीक्षा दीजिए और शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। ये सब पंडरपुर में हो रहा है बाय द वे, ध्यान रखना इस बात का। तो नित्यानंद प्रभु के मधुर शब्द सुनकर भाव विभोर होकर लक्ष्मीपति जी रोने लगते हैं, लेकिन बलराम जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उनको अपने गोद में बिठाते हैं, उनके दाहिने कान में वही मंत्र बोलते हैं जो स्वयं बलराम जी ने उनको स्वप्न में दिया था। तब उनके नेत्रों में आंसू आते हैं, शरीर में कंप निर्माण होता है, उनका मन करुणा से भर जाता है, वात्सल्य भाव से, और वो नित्यानंद प्रभु को दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के बाद तुरंत नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं, उनको पता भी जाता है कब चले गए। तो लक्ष्मीपति जी बड़े विरह में आते हैं, अरे नित्यानंद प्रभु का स्वप्न में बलराम जी के रूप में संग हुआ, उनको तब तक पता नहीं चल रहा था कि बलराम जी और नित्यानंद एक ही हैं। बलराम जी ने सपने में आदेश दिया, एक बालक आया उनको दीक्षा दिया, उस बालक से भी उतना ही प्रेम अनुभव हुआ, व्याकुल हो गए वो जब नित्यानंद जी चले गए, बड़े व्याकुल हो गए। तो ऐसे ही दुख में एक बार जब वो निद्रा में थे तब नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए। ये भी घटना पंढरपुर में उसी घर में हो रही है, क्योंकि उसी उनके निवास के दौरान ये सब घटनाएं हो रही है। एक ही निवास है, एक ही बार आए हैं, उसी में ये सारे प्रसंग हो रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनको देखकर उनकी आंखों से नदियों जैसे अश्रु बहते हैं, और उनके सामने ही स्वप्न में उनकी आंखों के सामने ही नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में क्या कहते हैं उसको बदल जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उनको पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु बलराम जी एक ही हैं, तब उनको समझता है। तो उनके चरण पकड़ते लक्ष्मीपति जी स्वप्न में और कहते हैं, ये भगवान आपने मुझे भ्रम में डालने के लिए सब लीला किया है, आपकी कृपा वही जान सकता है जिस पर आप कृपा कर सकते हो, जिस पर आप कृपा करते हो वही आपकी कृपा का जो विस्तार है महानता है वो जान सकता है। आप मुझे क्यों फंसा रहे हो, मतलब वाई आर यू चीटिंग मी, मैं एक अत्यंत पतित व्यक्ति हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे केवल आपके शरण में मैं आ सकूँ ऐसी कृपा करना। लक्ष्मीपति के शब्द सुनकर भगवान नित्यानंद प्रभु बड़े प्रेम से उसको देखते हैं, उनको देखते हैं, और फिर बलराम जी का स्वरूप छोड़कर फिर नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब लक्ष्मीपति जी का जो भाव है और वृद्धिगत हो जाता है, और नित्यानंद प्रभु उन पर अगाध कृपा का वर्षाव करते हैं और कहते हैं, जो भी आपने देखा है स्वप्न में आपको किसी को नहीं बताना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को कहा था, पूरा वृंदावन का दर्शन दिया गोपाल जी के रूप में, फिर वृंदावन धाम प्रकट किया, बाद में क्या कहा, किसी को बताना नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट बात है, कोई अद्भुत वस्तु आपको ऐसी पता चलती है, इसका अनुभव होता है, एहसास होता है, अनुभूति होती है, और बाद में आपको आदेश मिलता है किसी को बताना नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन लक्ष्मीपति जी कहते हैं कि जब वो भगवान अंतर्धान हो जाते स्वप्न में, तो उसके बाद वो बड़े ही विरह व्याकुल हो गए, उसके बाद में उनका पूरा भाव बदल गया, उन्होंने बोलना चालना बंद कर दिया, एकांत में मग्न अवस्था में तुरिया अवस्था में रहने लगे वो। और कुछ ही दिन के बाद में लक्ष्मीपति तीर्थ जो है वो अंतर्धान हो गए, शरीर छोड़ के अंतर्धान हो गए। तो ये सब लीला जो है वो पंढरपुर में हुई है। हम देख सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, बलराम जी के अवतार हैं, बड़े दयालु हैं, आदि गुरु हैं, उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ के माध्यम से पंढरपुर को चुना अपनी दीक्षा को लेने के लिए। ये लीला जो है, भगवान हमेशा अपनी अपनी अवतार में सब जगह दीक्षा लेते हैं। प्रभु रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से दीक्षा लिया था, श्री कृष्ण भगवान ने सांदीपनि मुनि से दीक्षा लिया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वरपुर से दीक्षा लिया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु के गुरु भाई हैं, और लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हैं। तो टेक्निकली अगर कहा जाए तो नित्यानंद प्रभु सीनियर हैं चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु जी उसके बाद में आए। तो इस तरह से उसके आगे फिर नित्यानंद प्रभु दीक्षा प्राप्त करने के बाद माधवेंद्रपुरी को मिलते हैं, और माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि भगवान की असीम कृपा है मुझ पर कि मुझे नित्यानंद प्रभु जैसा गुरु भाई और मित्र प्राप्त हुआ। एनीवेज ये नित्यानंद प्रभु का लीला है। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं कि बचपन में उनके घर में एक बड़ा भाई था, उनके लिए विश्वरूप नाम था उसका, बड़ा अप्रतिम सौंदर्य था उसका, बड़े दिव्य गुण थे उसके अंदर, उसको देखकर किसी को भी शरीर को अति आनंद का अनुभव होकर मन में भगवान का प्रेम और भक्ति की स्फूर्ति होती थी, क्योंकि ब्राह्मण जब आया था तो देख के हैरान हो गया उनको, ये कौन है, किसका पुत्र है ये। तो ये विश्वरूप जी अद्वैत आचार्य के घर पे दिन रात भागवत का श्रवण करते थे, यहाँ तक कि छोटे निमाई, हाँ चैतन्य महाप्रभु छोटेपन में उनका नाम निमाई था, छोटे निमाई को भेजती थी माता पिता, सची माता और जगन्नाथ मिश्रा, जाओ विश्वरूप को भोजन के लिए बुलाओ, तो कई घंटे निमाई को रुकना पड़ता था, इतने वो मग्न रहा करते थे। फिर बड़ी ज़बरदस्ती से वो भोजन करने के लिए घर आते थे और फिर दोबारा चले जाते थे और दिन भर अद्वैत आचार्य से भागवत श्रवण करते थे और तल्लीन रहते थे भगवान के कृष्ण की प्रेम भावना में। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता को थोड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे अपना बेटा तो पूरा भागवत में ही लीन है, और भागवत में जो लीन हो जाता है उसको संसार में कोई रुचि नहीं होती है, और हम देख रहे हैं हमारा बालक बड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन उसको संसार की किसी वस्तु में, यहाँ तक कि निद्रा और भोजन में भी रुचि नहीं है। तो अभी अगर उसको उनकी भाषा में अगर बचाना है तो उसका विवाह करना होगा। हमारे अंदर भी ऐसे बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब बालक जो ब्रह्मचारी बनने का कोशिश करता है तो माता पिता उसको विवाह करने की कोशिश करते हैं। तो घर में माता पिता चर्चा करने लगे, अभी विश्वरूप के लिए अच्छी कोई लड़की ढूंढना चाहिए। जैसे ही विश्वरूप के कान में ये खबर आई कि माता पिता विचार कर रहे हैं मेरे विवाह का, तुरंत उससे उस जगह से निकल गए। वो किसी को बताया भी नहीं, सोच किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, तुरंत अदृश्य हो गए, मतलब गायब हो गए वहाँ से। संन्यास ग्रहण किया उन्होंने और शंकरारण्य ये नाम धारण किया और भारत भर भ्रमण किया। तो उस समय सची माता देवी के मन में अद्वैत आचार्य के प्रति गलत भाव पैदा हो गया, मतलब क्रोध आया उनको कि इनकी वजह से मेरा लड़का जो है ना वो संसार छोड़ के चला गया, अपराध किया मन से उन्होंने। आगे जाकर जब महाप्रकाश लीला हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा नहीं किया, सब भक्तों पर कृपा किया और सब भक्तों ने पूछा अरे माता पर कृपा नहीं किया। महाप्रभु कहते माता अपराधी है, वैष्णव अपराधी है, उन्होंने अद्वैत आचार्य का अपराध किया है, मैं उन पर कदापि कृपा नहीं करूँगा। जब तक अद्वैत आचार्य उनको माफ़ नहीं करते हैं, जब तक वे अद्वैत आचार्य के चरणों में गिरकर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक उन पर कृपा नहीं हो सकती है। फिर सची माता ने अद्वैत आचार्य की माफ़ी मांगी, बड़े अद्भुत तरीके से, लंबी कथा है उसकी। एनीवेज, तो ये विश्वरूप का गमन जो है ये इनके परिवार में बड़ी हलचल मचा देता है और उसके आगे जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु भी अलग अलग अनुभव करते हैं। कुछ लोग उनकी टीका करते हैं, कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं, कुछ लोग उनके कार्यकलापों पर हंसते हैं। तो उनको लगता है कि अभी संन्यास लिए बिना लोगों को हम भगवान की भक्ति को प्रदान नहीं कर सकते, तो वो भी संन्यास लेते हैं। बहुत लंबी लीला है उनकी संन्यास की, विश्व के कल्याण के लिए, हम जैसे सभी कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु अपनी देवता जैसी सुंदर पत्नी और जगन माता जैसी सुंदर माता सची माता, इनका संग छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जो है वो संन्यास लेने के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। और उसके बाद में जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ से अपने भाई को ढूंढने के लिए वो भारत भर की यात्रा करते हैं, दक्षिण भारत की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि वो मैंगलोर में आते हैं और मैंगलोर से बहुत लंबी यात्रा है उनकी, बहुत सुंदर यात्रा है। उनका बाहिर उद्देश्य था कि वो अपने भाई को ढूंढें, कहाँ गए शंकरारण्य जी, उनके भाई विश्वरूप, और अंतरंग इच्छा थी कि पूरे भारत भ्रमण करके हरिनाम संकीर्तन का लोगों को दर्शन करा के सबको प्रेम और भक्ति बांटें, सबको भाव विभोर करके भगवान के भक्त बना दें। उन्होंने पूरे भारत भर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लूटा। उसके बाद में जब वो घूमते घूमते श्रीरंगम आए, श्रीरंगम में उन्होंने 4 महीने निवास किया जहाँ पर वेंकट भट्ट के साथ उन्होंने लीला किया। श्री विट्ठल भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। और वहाँ से निकलने के बाद में वो मैंगलोर आए, मैंगलोर से वो उड़पी आए, उड़पी से उन्होंने उड़पी के मध्वाचार्य संप्रदाय के आचार्यों से चर्चा किया और वहाँ से वो एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर पता चली। वहाँ पर वो कृष्णा और वेन्ना नदी के संगम पर आए, ये महाबलेश्वर में है। कृष्णा नदी, वेन्ना नदी, सरयू, सावित्री, गायत्री, ये 5 नदियाँ महाबलेश्वर के पर्वत से निकलती हैं। वहाँ पर हर नदियों का ऐसा जॉइंट में संगम है, कृष्णा वेन्ना सरयू गायत्री सबका संगम है वहाँ पर अलग अलग जगह पर। तो वहाँ पर कृष्णा वेन्ना नदी के संगम पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वहाँ पर उन्हें कृष्ण कर्णामृत नाम का दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुआ। उस समय विवाह से कृष्णा नदी को पार करते हुए सांगली, तासगांव और भिवघाट इस मार्ग से वो पंढरपुर में आते हैं। बोलो पंढरपुर धाम की। इस पंढरपुर में बड़ी अद्भुत घटना हुई। जब वो यहाँ पर आए तो इस अध्याय, इस पंढरपुर के जो उनकी भेंट है उसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अध्याय क्रमांक 9 और श्लोक क्रमांक 282 से 302, इसमें आपको विस्तार में वर्णन मिलेगा उनकी पंढरपुर भेंट का। तो पंढरपुर में जब आए वो साल था 1514 साल में महाप्रभु जी पंढरपुर में आए और एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने निवास किया। 525 साल पहले पंढरपुर के श्री विट्ठल भगवान का यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ था, लीला हुई थी और उनके चरण कमलों से भूमि पावन हो गई थी। सब लोग, चारों वर्णों के लोग यहाँ पर बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े आनंदी समाधानी रहते थे। कोई लोभ नहीं था किसी के अंदर, कोई पाप वासना नहीं थी। चंद्रभागा के तट में, चंद्रभागा के किनारे वालवंट में, हाँ बालकुमाय प्रदेश में स्नान करते हुए अपने आप को धन्य मानते हुए यहाँ के लोग निवास करते थे। हरी हरी राम कृष्ण हरी का कीर्तन करके अपने आप को जीवन के परमोच्च आनंद की प्राप्ति कर रहे थे। तो धन धान्य की कमी नहीं थी, सब जगह समाधान था, जीवन को जो आवश्यक थे वो सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थी। ऐसे ही एक दिन प्रातः के समय जब स्त्रियाँ पानी भर रही थी, स्नान आदि कार्य को समाप्त करके अपने घर को स्वच्छ कर रही थी, हाँ सुगंधित द्रव्य से, पुष्प से अपने घर को सजा रही थी, मंगल गीत गा रही थी, उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने घुटने तक जो भुजाएं हैं उसको अजानुलंबित कहते हैं, मतलब अजानुबाहु, इनकी दोनों भुजाएं अपने घुटने तक लंबे हैं। आप अपना हाथ लगा के देखिए, आपको पता चलेगा आपकी भुजाएं जो है वो आधे ही जंगा तक आती हैं। तो ये दिव्य पुरुष का, भगवान के अवतार का लक्षण है। स्वयं भगवान जब आते हैं तो उनकी भुजाएं भी, प्रभु रामचंद्र, कृष्ण भगवान, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनकी सभी भुजाएं जो हैं घुटने तक लंबी होती हैं। तो अपने इसी लंबी लंबी दिव्य भुजाओं को आकाश में उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भाव में विभोर होकर श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व तट के ओर से, मतलब हम लोग अभी चंद्रभागा के इस तट पे हैं, कौन सी दिशा है ये, पश्चिम दिशा है जहाँ पर हमारा इस्कॉन का मंदिर है, उस तरफ से श्री चैतन्य महाप्रभु भुजाओं को उठाते हुए दिव्य मधुर प्रेममय भगवान के नाम का ध्वनि करते हुए सभी जीवों को, सभी व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को, धाम वासियों को भाव विभोर करते हुए जल में प्रवेश करते हैं। और ऐसे अति आनंद के दिव्य भाव में जैसे कोई लगेगा कि कोई व्यक्ति पागल हो गया है, ऐसे मदांध होकर प्रेम में नदी में स्नान करते हैं और वहीं से चलते हुए वो विट्ठल का दर्शन करने के लिए आते हैं। तोता होइते गौरचंद्र पंढरपुरे आईला, विट्ठल ठाकुर देखी आनंद पाईला, प्रेम अभिषेक कोईला बहुत कीर्तन नर्तन, तहाँ एक विप्रतार केला निमंत्रण। वो जब भगवान विट्ठल का दर्शन करते हैं तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, उनके मंडप में नृत्य करने लगते हैं, सभी वहाँ के पुजारी, सभी वहाँ के पूजन करने वाले देखते रहते हैं उनको, उनको देख कर अति आनंद का अनुभव करते हैं, भाव विभोर होकर नाचते हैं, कूदते हैं, शरीर से रोमांच खड़ा होता है। और वहीं पर कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण उनको निमंत्रण करता है, आइए हमारे घर पे आइए। जहाँ जहाँ महाप्रभु चैतन्य गए हैं उनको महाप्रभु को सभी ब्राह्मणों ने निमंत्रण दिया है और ब्राह्मणों के घर में उन्होंने भोजन किया है, वहाँ पर अनंत कृपा का वर्षाव किया है। तो कीर्तन समाप्त होने के बाद वो ब्राह्मण के घर पे गए, ब्राह्मणों ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, उनका प्रेम से उनको भोजन दिया। प्रसाद के बाद में श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को एक सुंदर शुभ समाचार मिला, वो ये है कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य जो हैं श्री रंगपुरी पंढरपुर में किसी ब्राह्मण के घर में आए हुए हैं। एक भक्त के लिए एक भक्त का मिलना कितनी बड़ी बात है। जैसे मैं सब में सऊदी अरब गया था ना, तो कोई भक्त नहीं वहाँ पर 9 महीने तक मुझे किसी भक्त का ना खबर मिली ना दर्शन हुआ और धीरे धीरे फिर एक एक क्या पहचान हो गया। तभी हम लोग पंडरपुर में आते हैं, इतने हजारों लाखों भक्त हैं, सबको हरि बोल नहीं करते हम लोग। लेकिन सऊदी अरब में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो अगले सिटी के बस स्टॉप पर एक भक्त खड़ा है, तो वहाँ जाकर आप उसको दंडवत प्रणाम हरि बोल करेंगे, क्योंकि वह दुर्मिल है, वहाँ पर दुर्लभ है। तो भक्त का जीवन में होना और संपर्क होना ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा का लक्षण है। जब तक भगवान के भक्त का संपर्क नहीं होता है तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। इतना भक्त का स्थान हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारे बाद में 15 साल बाद में आया हुआ भक्त है या हमारे 15 साल पहले आया हुआ सीनियर भक्त है। जो भी भगवान के नाम का जप करता है उसका संपर्क रहना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम भक्ति के कितने भी उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे, कितने भी साल हमारा भजन होगा, 50 साल भी हो जाएंगे, उसके बाद भी हमको ये समझना नहीं चाहिए कि अभी मैं एकांत में रहकर भजन कर सकता हूँ, अब मैं कई कुटी बनाऊंगा जंगल में और किसी से नहीं मिलूंगा और भगवान के ध्यान में मग्न रहूंगा। ये सब भूल भुलैया है, दिस इज इल्यूजन कि ऐसा हो सकता है। किसी भी ऊंची अवस्था में अगर भगवान का संपर्क, भक्तों का संपर्क छूट जाता है तो हमारा पतन निश्चित है। हम कहीं से भी अपनी दिशा भूल होकर कहीं भी अपने आप को खो सकते हैं माया के जंजाल में। तो महाप्रभु चैतन्य स्वयं भगवान है, भक्तों के भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं, फिर भी जब पता चलता है कि कोई महान भक्त पंडरपुर में आए हुए हैं, उनके शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। तुरंत उस ब्राह्मण को लेकर श्रीरंगपुरी को मिलने के लिए जाते हैं और भाव वेश में उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे उनका दर्शन होता है। श्रीरंगपुरी ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरी के गुरु बंधु थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। रंगपुरु को देखकर महाप्रभु के शरीर में अष्ट भाविक सात्विक भाव उत्पन्न होता है। महाप्रभु के भेंट से हर्ष भरित होते हैं श्रीरंगपुरी, और महाप्रभु को बड़े प्रेम से बालक को जैसे उठाते हैं उसे उठाकर गले लगाते हैं, अपने गोद में बिठाते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो दृश्य कैसे होगा। महाप्रभु 7 फुट 6 इंच लंबे थे, श्रीरंगपुरी उनको एक बालक के रूप में अपने गोद में बिठाते, बड़े प्यार से दुलारते हैं। एक होता है ना, कोई अपने भाई का बेटा होता है ना, भतीजा होता है या कोई पोता होता है, उस भाव से वात्सल्य भाव से आलिंगन देकर उन्होंने एक दूसरे को प्रेम अश्रुओं से नहलाया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने भाव वेश में श्री रंगपुरी को बताया कि ईश्वरपुरी से मेरा क्या संबंध है, मैं उनका शिष्य हूँ। तो ये सुनकर रंगपुरी के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हो गया, और ज़्यादा जागृत हो गया। पहले स्वयं स्फूर्त था, अब पता चला कि ये हमारे गुरु भाई के शिष्य हैं। और उन्होंने बहुत दिन तक पंडरपुर में निवास किया एक दूसरे के साथ में कृष्ण कथा करते हुए। तो श्रीरंगपुरी ने फिर बहुत समय के बाद में पूछा कि आपका जन्म स्थान क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम का नाम लेते ही रंगपुरी ऐसे इतिहास में चले जाते हैं, नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम। मैं एक समय मेरे गुरुजी के साथ नवद्वीप गया था, वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर में हम निवास किया था, उसका नाम जगन्नाथ मिश्रा था, उसकी देवता समान पत्नी थी, उसका नाम था सची माता। उस माता ने, वो जगन माता के समान वात्सल्य में थी, हर जीव के प्रति उसके मन में वात्सल्य भाव था। इतने प्रेम से और भाव में आंखों में अश्रु लेकर उन्होंने भोजन बनाया और हमको भोजन खिलाया। और मुझे अभी भी होता ना, वो हमारे गांव में वो केले के झाड़ पे वो एक वायलेट कलर का फूल आता है, केलफूल कहते हैं उसको, और वो बंगाल के लोग या कर्नाटक के लोग या जो किनारे में रहते हैं वो लोग उसका सब्जी बनाते हैं, उसकी कड़ी बनाते हैं, उसका पकोड़ा बनाते हैं, उसका कोफ्ता बनाते हैं। तो रंगपुरी विस्तार में महाप्रभु चैतन्य को बता रहे हैं कि सच्ची माता ने बनाए हुए केले के फूल की कड़ी का स्वाद अभी भी मेरे जिह्वा पर है, ऐसे बता रहे हैं। वो केले की जो फूल की कड़ी है ना, उससे ज़्यादा यादगार क्या है, उसका प्रेम, जिसके जिस प्रेम के साथ में महाप्रभु सची माता ने उनको वो भोजन कराया था, उसके वजह से वो केले की कड़ी उनको याद आ रही है। तो वर्णन कर रहे हैं और सची माता की याद आती है उनको, ये सुनते हुए उनको शरीर गदगद होता है उस प्रेम को याद करते हुए। वो कहते हैं कि वात्सल्य में वो सब पूरे विश्व में श्रेष्ठ थी और हम सब पर उन्होंने, माधवेंद्रपुरी हमारे गुरु महाराज और हम पर एक पुत्र के समान प्रेम उन्होंने प्रकट किया। वो आगे कहता है कि मुझे एक विशेष बात याद आती है, उनके घर में ना एक सुंदर बालक था, उसका नाम विश्वरूप था, और अचानक वो घर छोड़ के चला गया, उसने संन्यास लिया। उसका नाम शंकरारण्य हुआ उसने संन्यास लेने के बाद, और भारत भर पे सभी तीर्थों में उसने भ्रमण किया। और अपनी भारत भर की तीर्थ यात्राओं के अंत में वो यहाँ पर पंढरपुर में आए, और यहाँ पर उन्हें अपने जीवन की परमोच्च ध्येय की प्राप्ति हुई, और यहीं से वो भगवत धाम में उन्होंने प्रयाण किया। आप सोच सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने इसी भाई को ढूंढने के लिए उसके बहाने दक्षिण भारत की यात्रा में निकले थे। तो महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो गए, उनका कंठ गदगद हो गया, उनकी आंखों से विरह के भाई की याद के अश्रु बहने लगे। वो कहते हैं मेरे पूर्व आश्रम में जब मैं घर में था, सन्यासी नहीं था, माता पिता के साथ था, तो विश्वरूप मेरे बड़े भाई थे, जगन्नाथ मिश्रा मेरे पिताजी थे और सच्ची माता मेरी माताजी थी। ये सुनकर रंगपुरी भाव विभोर होकर वो तुरंत जाकर महाप्रभु चैतन्य को टाइट बेटी मारते हैं, बड़ा कड़रा आलिंगन देते हैं। देखो कैसा योगा योग है, मुझे तो पता भी नहीं है मैं किसका इतिहास बता रहा हूँ, उनके पुत्र का इतिहास, आप उनके पुत्र हो, वो सही उस इतिहास बता रहा हूँ आपको। इस तरह से अपने बंधु विश्वरूप को उनका महाप्रयाण, जो दुखद महाप्रयाण यहाँ पर हुआ, उसकी खबर रंगपुरी से उनको यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ये नित्यानंद प्रभु के अंश थे, बलराम जी के अवतार थे, और जब उनका शरीर उन्होंने यहाँ पर छोड़ा तो वो नित्यानंद प्रभु के शरीर में विलीन हो गए। उनकी यहाँ पर कहीं समाधि नहीं है, लोग पूछते समाधि कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से वो प्रयाण किया उन्होंने इसलिए कोई समाधि नहीं है, ऐसा लिखा गया है। तो इस तरह से ये सुंदर लीला जो है इसी पंढरपुर धाम से विश्वरूप भी अंतर्धान हो गए, और रंगपुरी का और महाप्रभु जी का सुंदर संवाद इस संवाद में इस जगह पर हुआ। और कुछ दिन के बाद में श्री रंगपुरी जी यहाँ से द्वारका में चले जाते हैं, और उसके बाद चार दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर निवास किया है और पूरे पंढरपुर क्षेत्र में हरिनाम संकीर्तन करके सबको प्रेम भक्ति का दान किया है। कुल मिलकर 11 दिन चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में रहे, 11 दिन श्री विट्ठल जी के चरण कमलों से ये भूमि पावन हो गई है, और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर 11 दिन तक रहकर सभी लोगों को प्रेम भक्ति का दान दिया है और पंढरपुर क्षेत्र को पावन किया है। 1986 में जब चैतन्य महाप्रभु के जन्म के 500 साल पूरे हुए, उनका जन्म 1486 साल में हुआ था नवद्वीप में, उसको जब 500 साल पूरे हुए तभी हम सब लोग सबसे पहली बार, हमारी सबसे पहली यात्रा 1986 हम लोग मार्च में मायापुर धाम गए थे। उसी साल में यहाँ पर लोकनाथ जी महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की पादुकाओं को स्थापन किया, वो अपने मंदिर में इस्कॉन मंदिर में है। महाप्रभु जी के यहाँ पर आने के याद के उपलक्ष्य में उन्होंने श्री चरण कमल उनके यहाँ पर स्थापन किए। तो इस तरह से हमारे गौड़ीय संप्रदाय के सबसे प्रमुख प्रणेता चैतन्य महाप्रभु और उनके भाई नित्यानंद प्रभु, इन दोनों का यहाँ पर संग हुआ है पंढरपुर धाम में। उसके बाद में हमारे संप्रदाय के उनके भी पहले वाले प्रणेता मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के शिष्य थे, दो शिष्य यहाँ पर आए, विट्ठल जी का दर्शन किया उन्होंने, और उनको इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने यहीं पर एक अपना स्थान स्थापन किया, उत्तरादि मठ नाम का। वैसे तो उडुपी में उनके अष्ट मठ हैं, प्रमुख कृष्ण मठ है और 8 मठ अलग अलग जगह पर हैं, और अपने शिष्यों को उन्होंने प्रचार करने के लिए बहुत सुविधा उपलब्ध की है। और विशेष बात है कि मध्वाचार्य ने जो 8 प्रमुख शिष्यों को चुना और उनको अपना मठ बनाकर सेवा करने का मौका दिया, और पर्याय इस सिस्टम के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण भगवान, उडुपी कृष्ण भगवान की सेवा जो है वो दो दो साल में सबको बांट दिया। लेकिन समझने वाली एक विशेष बात ऐसी है कि उन्होंने उनको दो दो साल में टर्न बाय टर्न एक अच्छे सीक्वेंस में सेवा करने का मौका दिया, लेकिन जब 2 साल की उनकी सेवा समाप्त होती थी और बाकी के साल वो जहाँ जहाँ अपनी जगह पर रहा करते थे, उनको पूजन करने के लिए उन्होंने एक विग्रह भेंट दिया सबको, किसी को नरसिंह भगवान दिए, किसी को प्रभु रामचंद्र दिए, किसी को और कोई भगवान दिए, लेकिन तीन उसमें से, आठ में से तीन लोगों को उन्होंने श्री विट्ठल के विग्रह प्रदान किए और उनके मठ में श्री विट्ठल के मंदिर की, भगवान की पूजा होती है और वह जहाँ जहाँ प्रवास करते हैं वहाँ वहाँ वो अपनी विट्ठल की आराध्य मूर्ति को लेकर यात्रा करते हैं। हमारा जो संप्रदाय है, जो जिसमें मेरा जन्म हुआ है, उसको कहते हैं गौड़ सारस्वत ब्राह्मण्य। और ये जो मध्व संप्रदाय है, मध्वाचार्य के बाद में लक्ष्मीपति तीर्थ के कुछ आसपास, शायद उसके पहले या बाद में होगा, एक राजेंद्र तीर्थ नाम के आचार्य हुए हैं इसी संप्रदाय में। उनका जो ब्रांच निकला हुआ है वो सब गौड़ सरस्वत ब्राह्मण का ब्रांच है और गौड़ सरस्वत ब्राह्मण के मंदिरों में सब जगह वेंकट रमण के रूप में विष्णु भगवान की आराधना होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हर वेंकट रमण मंदिर में आपको श्री विट्ठल की मूर्ति मिलेगी, क्योंकि विट्ठल भगवान की जो भक्ति है, ये जो प्रसार है भक्ति का, ये कर्नाटक में हुआ है, आंध्र में हुआ है, कुछ हद तक केरल में हुआ है, गुजरात में हुआ है और मध्य प्रदेश में भी हुआ है, लेकिन अधिकतर महाराष्ट्र में, बाद में गुजरात में, आंध्र में और कर्नाटक में हुआ है, इसलिए उसको भगवान को कानाडाऊ विट्ठल भी कहते हैं, कानाडा विट्ठला। इसलिए हमारे गांव में सब जगह पर विट्ठल भगवान की भक्ति है। उडुपी कृष्ण का तो प्रधानता है ही उडुपी में, लेकिन बाकी सब मंदिर में, इवन उडुपी कृष्ण के मंदिर में भी विट्ठल जी की मूर्ति है, उनके चरणों के पास रखी हुई है। इस तरह से ये संत जो हैं, नामदेव जैसे संत हैं, उन्होंने ये सब प्रचार किया है हिंदी और मराठी भाषा में, विट्ठल भगवान की भक्ति का प्रसार किया है। तो मध्वाचार्य के शिष्यों ने यहाँ पर आकर उत्तरादि मठ स्थापन किया और कुछ दिन बाद उन्होंने बड़े आग्रह से मध्वाचार्य को यहाँ पर बुलाया और मध्वाचार्य यहाँ पर आने के बाद में बड़ा आनंद हुआ उनको और उन्होंने एक मिनट ना मध्वाचार्य पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ दो उनके शिष्य थे, उन्होंने यहाँ पर स्थापन किया और यहाँ पर मध्वाचार्य नरसिंहाचार्य की इच्छा से यहाँ पर आए, उन्होंने श्रीमद् भागवत का यहाँ पर पठन किया है, सभी आचार्यों ने यहाँ पर भागवत कथा किया है 7-7 दिन के लिए और यहाँ पर एक अभिमानी पंडित को उन्होंने परास्त किया है और यहाँ पर निवास किया है। वल्लभाचार्य का भी यहाँ पर निवास हुआ है। वल्लभाचार्य जो है वो विश्वनामी संप्रदाय के आचार्य हैं, बड़े दिव्य पुरुष है वो और उनका जन्म भी अलौकिक है और पुष्टि मार्ग के वो प्रवर्तक हैं। तो वो पहले विरक्त भक्त थे भगवान के और जब पंडरपुर में आए तो वो भी उसी तीर पर थे, वहाँ पर आज भी वल्लभाचार्य की बैठक है जहाँ पर वो विराजमान थे। तो वहाँ पर बैठकर उन्होंने भजन पूजन आरंभ किया, चंद्रबाबा भागा में स्नान किया तो उनके अनुयायी ने उनको पूछा कि महाराज जी अभी तक विट्ठल का दर्शन नहीं किया हम लोग ने, बोले जरूर करेंगे। तो ऐसे ही वो ध्यान लगा के बैठ गए और विट्ठल जी का ध्यान करने लगे कि दर्शन करना है। उस समय कुछ भक्त लोग भाग भाग के आए और उन्हें बताया कि एक बड़े लंबे और चौड़े कमनीय शरीर वाला सांवले रंग का व्यक्ति डंडा लेकर चंद्रभागा के नदी के ऊपर से चलकर आ रहा है, वॉकिंग ऑन द वॉटर एंड कमिंग टूवर्ड्स अस। तो वल्लभाचार्य को अंदर से प्रेरणा हुई कि स्वयं भगवान आ रहे हैं, वो तुरंत वहां से भागे और वहीं पर चंद्रभागा के किनारे विट्ठल भगवान ने उनको दर्शन दिया मूर्त स्वरूप में और वो भाव विभोर हो गए, उनके चरणों में गिर गए, बड़ी आराधना की उन्होंने। तो वल्लभाचार्य ने उनके 84 बैठक हैं उसमें से एक बैठक वहाँ पर है, वल्लभाचार्य ने फिर यहाँ पर निवास किया और श्रीमद् भागवत का पठन किया। उसके बाद में हम देखते हैं सबसे प्रमुख संत जो हैं, जो तुकाराम महाराज के रूप में जाने जाते हैं। तुकाराम महाराज का जन्म जो है वो देहू में हुआ था, उनके माता पिता जो है दामू शेट्टी बड़े भगवान के भक्त थे और एक बार जब वो ऐसे ही पंडरपुर में घूमते घूमते आए थे, उनको पंडरपुर के भगवान से इतना मोह हुआ, इतना आकर्षण हुआ कि वो आषाढ़ और कार्तिकी के बीच में अनेक बार गए, अनेक बार वारी किया उन्होंने, लोग 2 बार करते साल में, तो उन्होंने साल में कई बार वारी करना आरंभ किया, उसमें वृद्ध हो गए वो। तो एक बार जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे तो रात में उनको स्वप्न आया और विट्ठल भगवान ने दर्शन दिया उनको रुक्मिणी के साथ में, और कहा कि आपने कितने प्रेम से इतने साल तक वारी किया है आषाढ़ी कार्तिकी का, पंढरपुर का, अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी मैं ही आकर आपके यहाँ निवास करता हूँ। और उनके सामने, उनके घर के सामने के जंगल में गए और वहाँ पर सो गए विट्ठल भगवान रुक्मिणी, ऐसा उनको स्वप्न आया। तो अचानक जगे हो गए, जग गए वो स्वप्न में, और उस दिव्य दर्शन का याद करते 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 वो जंगल में चले गए। तो उस जंगल में उनको पांडुरंग रुक्माई की मूर्ति ऐसे लेटी हुई मिली। उन्होंने कहा था मैं यही निवास करूंगा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुकाराम के पिताजी ने फिर उन्हीं विट्ठल के और विग्रह को वहां पर स्थापन किया देहू में। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ के जो विग्रह हैं पांडुरंग रुक्माबाई के और वहाँ के जो विट्ठल के विग्रह हैं वो अभिन्न है, वो सेम है। लॉर्ड बाय हिज ओन डिजायर वेंट एंड स्टेड देयर इन रिस्पॉन्स टू डिवोशन बाय तुकाराम्स फादर। और तुकाराम महाराज फिर बड़े हो गए, बड़ी लंबी जीवन की कथा है उनकी। और वहाँ से उन्होंने विट्ठल भगवान के भक्ति का प्रचार किया, अनेक अभंग लिखे और यहाँ के जन जन को बड़ी सिंपल सादी सीधी भाषा में उन्होंने भक्ति का रहस्य को खोल कर दिखाया। क्योंकि यहाँ के हमारे महाराष्ट्र के लोग जो हैं बड़े गरीब रहते हैं, उनको बड़ा विद्या ज़्यादा प्राप्त नहीं होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, किसान होते हैं, बहुत सिंपल हृदय के होते हैं, सिंपल सिंपल काम करते हैं। उन सब लोगों को उनकी भाषा में ये भक्ति का दिव्य रस समझाने के लिए तुकाराम महाराज ने ऐसे सुंदर अभंग लिखे जो हमारे भागवत जी में और अनेक उपनिषदों पुराणों में उपलब्ध है। उनको सिंपल भाषा में, मराठी भाषा में उन्होंने प्रकट किया। और उन्होंने यहाँ पर आकर जन जन में, हाँ, जो लोहार है, कुंभार है, चांबार है, जो हर प्रकार के छोटे छोटे काम करते हैं, उन सब लोगों को ये भक्ति का मार्ग खोल दिया उन्होंने। जो पहले ब्राह्मणों के हाथ में था, ब्राह्मण अपने अधिकार में रखते थे, उनको अछूत बनाकर दूर भेजते थे, ऐसे सभी जातियों के, धर्म के, सभी भाषाओं के, सभी गरीब लोगों को उन्होंने भगवान की भक्ति का दरवाज़ा खोल दिया। बहुत टिका हुई उन पर, बहुत कष्ट प्राप्त हुआ उनको, फिर भी आज उनकी कृपा से ही यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में, आंध्र में, सब जगह पर ये भक्ति का जो दिव्य बगीचा खुला हुआ है, हाँ, खिल गया है, ये उनकी कृपा है। ज्ञानेश्वर महाराज भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर निवास किया है। ऐसा कहते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने महाराष्ट्र में गरीब जनता के बीच में भक्ति का जो नींव है उसको रखा। हाँ, क्या मंडा तला ज्ञानेश्वर, हाँ, माउली, क्या उसका एक अभंग है, तुका झाला से कळस, हाँ, ज्ञाने रचिला पाया और तुका झाला से कळस। तुकाराम महाराज ने फिर उस भक्तिमय मंदिर में जिसकी नींव ज्ञानेश्वर महाराज ने बनाई थी, उसका जो कळस है, मतलब उसका जो शिखर है, वो तुकाराम महाराज ने बनाया। इसका मतलब ये जो पूरा भक्तिमय मंदिर है वो सब लोगों के लिए उन्हें उपलब्ध कर दिया। शंकराचार्य भी यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद प्रचार करने के लिए आए थे। हाँ, उनका पूरा जीवन ही, वो शिवजी के अवतार हैं, स्वयं शिवजी हैं वो, लेकिन भगवान के आदेश से वो आए थे कि जब भगवान को भगवान नहीं है ऐसे प्रचार बुद्ध देव ने किया था कि भगवान है ही नहीं, वेद ही नहीं है, भगवान भी नहीं, कुछ नहीं है, आप मुझे फॉलो करो बस। तो उसके आगे का स्टेप जो है, कम से कम भगवान अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में उपलब्ध हैं, शक्ति के रूप में उनका निवास है, ये प्रचार करने के लिए अव्यक्तवाद भगवान ने शंकर जी को भेजा था। और शंकर जी सब जगह मायावाद फैलाया कि कैसे भगवान व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है और एनर्जी है, इस तरह से हमको उनमें एक रूप होना है। वो शंकराचार्य जब पंढरपुर में आए तो पांडुरंग के विग्रह को देखकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने पांडुरंग अष्टकम लिखा है, बहुत सुंदर वर्णन किया है पांडुरंग अष्टकम का। और उसमें एक मिनट, भी वो नहीं मिलेगा मुझे ऑन द स्पॉट, एनीवेज, तो विशेष बात यह है कि वो शिवजी महाराज जो हमारे हैं वो भगवान के बड़े भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, और वो हृदय से भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनको सेवा करना है इस प्रकार से कि भगवान व्यक्ति नहीं है। इसलिए अपने जीवन के अंत में उन्होंने कहा भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूर्ख व्यक्ति, भगवान की व्यक्ति रूप में पूजा करो, गोविंद की पूजा करो, उसी में जीवन का कल्याण है। हाँ, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर अष्टकम लिखा है, उसके अंदर एक श्लोक जो है बहुत ही सुंदर है। ओके, हाँ, प्रमाणम भवाब्दे निदम मामकानाम नितंब कराभ्याम धृतो येन तस्मात् विधातुर वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। सब लोग बोलिए परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। वो कहते हैं कि पांडुरंग स्वयं कह रहे हैं कि भवसागर तो बहुत गहरा और बहुत ही डिफिकल्ट है क्रॉस करने के लिए, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके लिए वो कमर तक हो जाता है। वो आचार्य बताते हैं वो कमर में हाथ लेके खड़े हैं उसका क्या अर्थ है कि यहाँ तक ही वो भवसागर इतना ही छोटा हो जाता है। जब कमर तक बने तो क्या होता है, हम लोग आराम से चल के जा सकते हैं ना। कल हम लोग नदी में थे, आप पूछ रहे थे ना कि पानी कितना रहता है, बोला इतना ही रहता है, इसमें से आप पार हो सकते हो। लेकिन जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, नहीं जा सकते उसमें, बहुत गहरा हो जाता है। तो शंकराचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पांडुरंग विट्ठल भगवान के भक्त बन जाते हैं आप जैसे सब लोगों के, उनके लिए भवसागर जो है वो कमर तक हो जाता है, इतना ही गहरा होता है, उसका ज़्यादा गहरा नहीं होता है। जो मेरे हैं भगवान कहते हैं, जो मेरे बन जाते हैं वो जीवन रूपी भवसागर वो सहजता से पार कर सकते हैं। ये समझाने के लिए भगवान विट्ठल ने अपने कमर पर हाथ रखे हैं और ब्रह्मदेव देव को भी रहने को जगह मिले इसलिए अपने नाभि को कोश स्वरूप दिया है, मतलब इतना विशाल बनाया है कि ब्रह्मदेव भी वहाँ पर निवास कर सकते हैं। ऐसे परब्रह्म स्वरूप श्री पांडुरंग भगवान को मैं अखंड भजन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने उनके स्वरूप का वर्णन किया है, मतलब आप पढ़ेंगे तो ये सारे श्लोकों में उनके रूप का ही वर्णन है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय शंकराचार्य। तो मतलब क्या है, बताना चाहते हैं कि मैं प्रचार तो कर रहा हूँ सबका अव्यक्तवाद का, लेकिन मैं इसी व्यक्ति रूपी भगवान पर विश्वास रखता हूँ और उसके सौंदर्य का वर्णन वो करते जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी लास्ट जो है मैं नामदेव के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक बात बताना मैं भूल गया आपको वल्लभाचार्य के बारे में। जब भगवान ने वल्लभाचार्य को दर्शन दिए यहाँ पर तो फिर उन्होंने उनको बताया कि मुझे आपके संप्रदाय में आगे एक संकट नज़र आता है कि आप तो सन्यासी रूप में विरक्त भाव में हो, आगे जाकर आपका संप्रदाय लोप हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करना चाहिए, तो भगवान ने उनको बताया कि आपको विवाह करना चाहिए, जब आप विवाह करेंगे तो आपके पुत्र जो है वो आपके आगे के संप्रदाय को चलाएंगे। तो फिर वल्लभाचार्य सन्यासी थे फिर भी उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, इसलिए आज भी वल्लभाचार्य संप्रदाय जो है वो गृहस्थ आश्रमी संप्रदाय है, उनके सारे गुरु गृहस्थ हैं। तो उनके दो पुत्र हुए गोकुलनाथ और विट्ठलनाथ, और इन गोकुलनाथ विट्ठलनाथ को हमारे रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोपाल जी जो प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी की कृपा से उनकी सेवा सौंप दी। फिर उनको 8 पुत्र हुए और वो सब बड़े मशहूर भक्त बने भगवान के, और उसके द्वारा ये वल्लभ संप्रदाय जो है वो आज भी चल रहा है पुष्टि मार्ग के रूप में, जिसमें भगवान के वात्सल्य रूप की सेवा है। तो यहीं पर विट्ठल भगवान ने उनको ये आदेश दिया था, उसके बाद में उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। तो नामदेव जी जो है उनका जन्म ही यहाँ पर हुआ था, इसी दिंडिर वन इसी पंडरपुर क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। विट्ठल भगवान को देखते देखते उनकी भक्ति करते करते उनका बाल्यपन गुजरा। उसके बाद में जब वो संत बने आगे जाकर तो उन्होंने भारत पर भ्रमण किया। वो ऐसे एक अद्भुत भक्त हैं जिन्होंने न केवल महाराष्ट्र में प्रचार किया बट वो गुजरात चले गए, वहाँ से वो यूपी चले गए, वहाँ से वो पंजाब चले गए। इसलिए आप देखेंगे यूपी में जाएंगे तो यूपी के जो बड़े संत हैं वो भी नामदेव महाराज के भजन गाते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल मराठी में लेकिन हिंदी में भी भजन लिखे। उनके अभंग जो है वो इतने मशहूर हैं कि ग्रंथ साहिब नाम का सिख लोगों का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे हमारा भगवद गीता है वैसे ग्रंथ साहिब प्रमाण सिख धर्म का। उस सिख धर्म के ग्रंथ साहिब में नामदेव जी के 11 अभंग इंक्लूड किए गए हैं और नामदेव गुरुवाणी के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। आप सोच सकते हैं पंजाब में इनकी पुष्प समाधि है पंजाब में। एक मिनट आपको मैं बताता हूँ, तो नामदेव जी का भाव जो है आप अपने भजन सुना होगा ना, अमृता हुनी गोड़
नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा,
ये भजन नामदेव जी ने लिखा है। और बाकी जो उनके बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं, चलो कोई बात नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, हाँ, तो कलियुगों के वैष्णव के लिए, सबके लिए उद्धार करने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे। और संत नामदेव जी की गुरुवाणी इस रूप में गुरु ग्रंथ साहिब 61 उनके अभंगों का उसमें इंक्लूड किया गया है, कितने हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, गुरुदासपुर इस जिले में एक घुमार नाम की जगह है, वहाँ पर संत नामदेव की भव्य दिव्य समाधि मंदिर है, और वहाँ पर यहाँ के भक्तों का मेला जो है वो हमेशा होते रहता है। और उन्होंने वही भजन लिखा है, पंढरीचा वास चंद्रभागी स्नान आणिक दर्शन विठोबाचे हेची घडो मज जन्म जन्मांतरी, हेची घडो मज जन्म जन्मांतरी, मागणे श्री हरी, मागणे श्री हरी, नाही दूजे पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान। इस तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार करते हुए उन्हें भारत भर भ्रमण किया। उसके बाद में जब वो पंढरपुर लौट के आए, तब उनका भाव जो है ना वो बहुत समझने और ग्रहण करने जैसा है। वो कहते हैं, तीर्थे करुणी नामा पंढरिया आला जीव लगे भेटिला विठोबाशी। जैसे कि वो यहाँ पर भी ये भी भाव है ना कि माझे माहेर पंढरी आहे भीवरी चातरी। सब संत लोग अपने पंढरपुर को मायका मानते हैं, मायका मतलब माई का घर माई का घर, मायका। तो सभी संत लोगों ने ये भजन गाया है कि कैसे पंढरी जो हमारा मायका है, माहेर घर। तो जैसे कोई व्यक्ति दूर दूर जाके फिर अपने माँ के घर लौट के आता है, वो भाव उनको अनुभव हुआ। सदगदित कंठ उसंडला नयनी, जब से जैसे ही मैं पंडित बाबा का दर्शन किया मेरा कंठ गदगद हो गया, मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे, और मैंने क्या कहते हैं घातली लोलनी चरणावरी, लोटपोट हो गए वो विट्ठल भगवान के चरणों में। हाँ, दूर दूर भटक के मैं बहुत थक गया, शिनलो पंडित आया, मैं बहुत थक गया दूर 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 जाके, आपकी कृपा दृष्टि को तरसता रहा मैं। यहाँ पर आने के बाद में मैं हिम पुष्टि यानी कि मैं हष्ट पुष्ट हो गया, दोबारा मुझे पुष्टि प्राप्त हो गई। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। हाँ, फिर एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है, नम्रता का प्रदर्शन करते हैं उसमें। अज्ञानाचा भाग होता माझे मनी म्हणून हिंडविले देशोदेशी। वो ये नहीं कहते कि मैं बड़ा संत था, रियलाइज सोल था, इसलिए प्रचार करने के लिए मैं देश पर चला गया। वो कहते कि मेरे अंदर अब अज्ञान था, वो अज्ञान को नष्ट करने के लिए प्रचार के बहाने भगवान ने मुझे कहाँ कहाँ भेजा, और अज्ञान को नष्ट करके फिर अपने घर पे बुलाया। परी पंडरी से सुख कोटी वाटे स्वप्न ही परी कोटि न देख वही। यहाँ का जो सुख है वो अनंत कोटि जैसा है। उदंडा तीर्थाची एक प्राय प्रौढ़ी परिचित्त माजे ओढ़ी चंद्रभागा। मैं कहीं भी घूमते चला गया फिर भी मेरा चित्त जो है वो यहीं पर रहा, मेरा मन जो है हमेशा चंद्रभागा की ओर खींचता रहा जहाँ पर भी मैं गया। उसके कहते हैं चौथे प्रकार का धामवास। एक प्रकार का धामवास कैसे होता है, यहाँ पर जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा धामवास मतलब हम धामवासी होते हैं। फिर कोई लोग बाहर से आकर धाम में अपना निवास बनाते हैं, सब कुछ छोड़कर यहाँ घर बनाते हैं, तो वो भी धामवासी दूसरे प्रकार के बन जाते हैं। फिर तीसरे प्रकार के धामवासी पहले हमारे जैसे हैं, जो कुछ दिन के लिए यात्रा में आते हैं, 4-5 रहते हैं चले जाते हैं, वो भी धामवासी हैं, वो उतने दिन के लिए धामवास कर रहे हैं। लेकिन चौथे प्रकार के धामवासी प्रभुपाद जैसे होते हैं, वो धाम में रहते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन धाम को ही हृदय में ग्रहण कर लेते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं उस धाम को वहाँ प्रकट कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी गए थे शरीर से यहाँ से भारत छोड़कर, लेकिन हृदय में वृंदावन धाम लेकर गए, और जहाँ जहाँ गए वो वृंदावन का प्रेम उन्होंने सबको दिया। तो उस तरह से नामदेव जी का निवास था, जहाँ जहाँ गए वो हृदय में पंडरी को लेकर वहाँ पर उन्होंने प्रकट किया विट्ठल की भक्ति को। मनोनी चंद्राची ठाकुरनी साउली आलो मजा सांभाली माए बापा। अभी मैं सब जगह घूमकर दोबारा हे भगवान आपके चरणों में आया हूँ, अभी आप मुझे आसरा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे और कहीं जाना नहीं है, मुझे यहीं पर आपके चरणों में रहना है, मुझे कोई समाधि वमाधि बनाना नहीं है, मेरी हे विट्ठला मेरी एक ही इच्छा है कि आपके चरणों में आपके भक्तों के चरण रज को प्राप्त करते हुए मैं रहूं। तो लोगों ने उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि हाँ गड्ढा खोदो, ठीक विट्ठल के सामने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और नामदेव जी उसमें कूद गए। जैसे ही वो कूद गए उनके साथ 14 जन और कूद गए, उनके माता पिता भाई भाई की पत्नी और उनकी शिष्या जनाबाई वो सब उसके अंदर कूद गए और वो बनी नामदेव की पायरी। नामदेव की पायरी बनी हुई ना, वो एक्चुअली एक तरह से उनकी समाधि ही है। एक नहीं 14 लोग वहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को वहाँ पर त्याग कर दिया। कितना बड़ा भाव है, देखो इतने बड़े संत हैं वो क्या सोचते हैं कि आपके दर्शन के लिए जो लोग आएंगे उनके चरण की रज जो है उसके कर्ण जो है मुझे प्राप्त होने चाहिए, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो ऐसे सुंदर भक्त जो हैं इनको बड़ी मान्यता है यूपी में बिहार में पंजाब में सब जगह पर, उनके चमत्कारों को पढ़ते हैं लोग। ये पेशे से सिंपी थे ना, टेलर थे वो, और विट्ठल भगवान ने इनके लिए कई चमत्कार दिखाए हैं। अभी वो समय नहीं इतना बताने के लिए, लेकिन हमारे बचपन में इन नामदेव के जो दिव्य चमत्कार थे पंडरपुर में जो हुए हैं वो सब हमारे बचपन के इतिहास में हम लोग ने पढ़े। तो ऐसा ये दिव्य पंडरी धाम है, आप लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हो, अनंत संतों ने इस भूमि को पावन किया अपने चरण स्पर्श से। चंद्रभागा रानी यहाँ पर अपने जल से इसको पावन कर रही है, विट्ठल भगवान निवास कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस चंद्रभागा के किनारे नरसिंह भगवान का भी निवास है, नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। ऐसे कहा भी गया है कि चंद्रभागा का स्नान करके नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी बड़ी कृपा यहाँ पर है, वो यहाँ पर निवास करते हैं। नदी के अंदर पुंडरीक की समाधि भी है, वो आप तो देखते हैं ना स्नान करते समय आपको दिखाई पड़ेगी, वो तो पुंडरीक ने भी यहाँ शरीर छोड़ा है अपना। इस तरह से आप सब लोगों को हम बधाई देते हैं कि आपने पंडरपुर में आने का निर्णय लिया। जिस समय से आप पंडरपुर आना है ये विचार करते हो उस समय से ही आपके हृदय शुद्धि हो जाती है, जस्ट विचार से कि जाना है पंडरपुर। कई लोग इस समय बारिश ना होने की वजह से पंडरपुर नहीं आ पाए, क्योंकि कब बारिश होगी कभी हम लोग प्रेरणी करेंगे ऐसी चिंता में कुछ लोग दुविधा में नहीं आ सके, लेकिन उनका मन जरूर सोचता होगा कि इस समय हम पंडरपुर में हुआ करते थे, एकादशी का दिन है। तो वो भाव जो है वो भी पंडरपुर में रहने जैसा ही है। हमारे गुरुदेव को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी ने वो न्यू द्वारका, न्यू जगन्नाथपुरी और क्या बनाया, न्यू वृंदावन और क्या बनाया, और न्यू गोवा, कई प्रकार के हाँ सब न्यू स्थापन किया। तो एक भक्त ने उनको अभी अभी कुछ एक महीने पहले जाने के पहले पूछा कि ये इसका मतलब क्या, एक्चुअली क्या वो धाम वहाँ प्रकट हो जाता है क्या, मतलब अमेरिका में इंग्लैंड में? तो महाराज ने बताया कि ये धाम वहाँ प्रकट होता है भक्तों के स्मृति के माध्यम से। नाम तो मैंने दे दिया है, प्रभुपाद जी ने नाम दे दिया है न्यू जगन्नाथपुरी धाम। वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भक्त अगर इस भाव से रहते हैं कि ये जगन्नाथपुरी हमेशा जगन्नाथ जी की याद करते रहते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, उन्हीं की याद करते हैं, तो उनके स्मृति के प्रभाव से वहाँ पर जगन्नाथपुरी प्रकट है। उसी तरह से आप विश्व में कहीं भी रहोगे अगर पंडरपुर विट्ठल भगवान की याद करोगे, आपने जो यहाँ पर निवास किया है उस निवास के अनुभव को याद करेंगे, उसको जो आपने हृदय में उसको महसूस किया है उस अनुभव को हम कहीं भी जाकर याद करेंगे, तो आप जहाँ कहीं भी हो पंडरपुर आपके लिए प्रकट है। तो इसलिए अभी आप आज कल परसों में चले जाएंगे, ये प्रार्थना करना कि पंडरपुर आपके हृदय में बैठकर आपके साथ में चले, जहाँ पर भी आप रहे पंडरपुर भगवान की विट्ठल भगवान की कृपा को संतों की कृपा को याद करते रहे, उस दृष्टि से आपके लिए ये पंडरपुर धाम सदैव प्रकट रहेगा। श्री वृंदावन धाम भी रहेगा प्रकट, जगन्नाथपुरी भी रहेगा, जहाँ जहाँ आपकी स्मृति होगी वो धाम आपके हृदय में उस समय प्रकट हो जाएगा। श्री पंडरपुर भगवान की, विट्ठल रखमाई की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।